کسی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. طالبان کی طرف سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مزید قیدیوں کی رہائی اور پرتشدد حملوں میں کمی سے انٹرا افغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی. کابل میں موجود امریکی سفارت خانے نیٹو, یورپین یونین اور افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلی مذاکرات کار زلم خلیلزاد نے بھی طالبان کی طرف سے عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے طالبان کے اعلان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے, تاہم افغان عوام مستقل جنگ بندی اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کے خواہاں ہیں. ترجمان نے کہا کہ صدر اشرف غنی نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کو 3 روزہ جنگ بندی اور طالبان کے خلاف کاروائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے. صدر غنی نے اس اعلان سے چند گھنٹے قبل کابل میں اعلی حکام سے خطاب کرتے ہوئے حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے ایک ہفتے کے اندر آغاز کا اشارہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت طالبان کے تمام 5,000 قیدیوں کی رہائی جلد مکمل کر لے گی, جس کے بعد اسے توقع ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ایک ہفتے میں شروع ہو سکیں گے. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ طالبان اور افغان حکومت کے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان میں مغربی فوجوں کے اتحاد نیٹو کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر, امریکی سفیر روز ولسن اور وہ افغان عوام کے لیے عید کی پرم چھٹیوں کے خواہاں ہیں. ظلم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ یہ عید تمام افغان عوام کو قریب لانے اور دیرپا امن کا باعث بنے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے سیکیورٹی فورسز عوام کی خدمت کرتی رہیں اور ان کو اس کوشش کے مشکور ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عید کے موقع پر تمام جنگجوؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کوئی آپریشن نہ کریں تاکہ 3 روز تک افغان عوام عید کی خوشیاں منا سکیں. تاہم ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کیا تھا کہ اگر افغان فورسز کی جانب سے کوئی کاروائی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. کابل میں تعینات امریکہ کے سفیر روز ولسن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عید کے موقع پر جنگ بندی کے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں. افغان عوام عید کی چھٹیاں امن کے ساتھ منانے کے حقدار ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ میں اس بات کا منتظر ہوں کہ دونوں فریقین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جلد بین الافغان مذاکرات کی طرف بڑھیں. ادھر پاکستان میں افغان سفیر عاطف مشال نے ایک بار پھر ذاتی وجوہات کی بنا پر صدر اشرف غنی کو استعفیٰ پیش کر دیا ہے. ایک ٹویٹ میں استعفے کا متن جاری کرتے ہوئے انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کو ایک وجہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس سے قبل 19 دسمبر اور 15 جولائی کو بھی استعفے پیش کر چکے ہیں, تاہم صدارتی دفتر نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. افغانستان کے آئین کی روح سے صدر خود بیرونی ممالک میں سفیروں کا تعین کرتے ہیں. پاکستان میں پارلیمان نے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تکمیل دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کے بلز کی منظوری دے دی ہے. اس بل کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں اور قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران اپوزیشن کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. قومی اسمبلی کی قائم کمیٹی برائے داخلہ کے راجہ خرم نواز کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آنے میں مدد ملے گی. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی کاروائیاں اب عالمی سطح پر بھی موضوع بحث بننا شروع ہو گئی ہیں. امریکی ادارے برائے امن نے پاکستان اور بھارت میں عدم برداشت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں رواداری ختم ہوگی, جبکہ پاکستانی ماہرین کے مطابق متنازع قانون سازی سے ملک بھر میں تحمل اور بردباری ختم ہوگی. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. पता है facebook.com/voaurdu।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आए हैं, और इस वक्त जबकि COVID-19 में पाकिस्तान ही क्या दुनिया भर में जो हेल्थ के मसाइल हैं उनको टेली हेल्थ के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बहुत कामयाबी भी हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के देही इलाकों में जो एक मसला है वो हेल्थ की उन फैसिलिटीज़ का है जो कि माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए पेश आती हैं, जिनको ना तो नज़दीक कोई ऐसा सेंटर मिलता है जहाँ वो जा सकें, ना हॉस्पिटल्स में आजकल COVID-19 की वजह से किसी भी किस्म के मरीज़ों को दाखिला देना मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में एक प्रोफेशन है ख़वातीन का जो कि ऐसी ख़वातीन की जो माँ बनने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है, और वो है मिडवाइफ्स। ये मिडवाइफ्स इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही हैं COVID-19 के दौरान, ख़वातीन को माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगियों को बचाने में क्या रोल प्ले कर रही हैं, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की फाउंडर मोहतरमा कुरतुल एन बख्तियारी, जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस की। ये बलूचिस्तान में इदारा है कायम जो कि क्या कुछ करता है ये हम इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुरतुल एन बख्तियारी साहिबा।
वालेकुम सलाम यास्मीन।
कुरतुल एन बख्तियारी, आपने अपना जो इंस्टीट्यूट था आपका, जो जिसको आप कहती हैं कि वो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस है, कुछ उसके बारे में बताइए, फिर बताइए कि इस इंस्टीट्यूट के तहत किस तरह फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट कायम की जो मिडवाइफ्स को प्रैक्टिकल जो उनका काम है उसकी ट्रेनिंग देती है।
तो IDSP कायम हुआ 1998 में, जो कि यंग लोग, लड़के और लड़कियां, खवातीन और मर्द हजरात दोनों जो कम्युनिटी लेवल पे अगर अपना कोई आइडियाज को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आइडियाज के जरिए अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसको हम एनरोल करते हैं। क्योंकि हमने जब लड़कियों की क्लासेस ली और उन लड़कियों को कोर्सेज किए, तो उससे हम पहुंचे कि बलूचिस्तान में बहुत हाई रेट है मैटरनल मोर्टेलिटी का। तो उसको जब देखा तो पता लगा कि इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी मिडवाइफ को ट्रेन किया है। जब उन लड़कियों से हम मिलते हैं कम्युनिटी मिडवाइफ से बलूचिस्तान में, तो वो बहुत ढेर सारी थी, थियोरेटिकली स्टडीज में बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी थी, मगर उन्होंने कभी डिलीवरीज नहीं की थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान। जब हमने ये मालूमात की और रिसर्च की, IDSP ने ये मालूमात की, रिसर्च की कि भाई ये क्यों, ऐसा कैसे हुआ कि आप सर्टिफाइड होकर आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो पता ये लगा कि बलूचिस्तान के अंदर ट्रेडिशनली अस्पतालों में बर्थ्स ही नहीं, औरतें जाती नहीं है, ट्रेडिशनली घरों पे होती है, 98% बर्थ तो घरों में होती है। तो अब ट्रेनिंग तो अस्पताल में होती है, तो जब इतनी औरतें जाएंगी नहीं तो ट्रेन कहाँ से, आप कैसे करेंगे अपने लोगों को ट्रेन। तो थोड़ी बहुत 5-10% जो औरतें पहुंच जाती थी अस्पताल, वहां पे फिर पहला जो मौका मिलता था वो डॉक्टर्स को मिलता था, लेडी डॉक्टर्स जो बन रही होती थी उनको पहले मौका दिया जाता था कि वो प्रैक्टिस करें। अब वो उनके जब नंबर्स पूरे हो जाते थे तो नर्सेस को दिया जाता था, नर्सेस के नंबर पूरे हो जाते थे तो LHV को दिया जाता था, और आखिर में अगर कुछ बचता है या नहीं बचता तो मिडवाइफ को कह दिया जाता था कि आगे करना है तो कर लो, कोई खास वो नहीं था। जब ये हमने गैप देखा तो हमें समझ में आ गया कि ये गैप जो है एक तो रस्म और रिवाज की वजह से भी है, फिर लोचदा इतना फैला हुआ है, इतना दूर दराज है कि किसी के भी डोर स्टेप के ऊपर तो ये अस्पताल पहुंचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्यों नहीं इन मिडवाइफ्स के अंदर जो गैप है, यही अपने जात के अंदर यही एक खातून होगी जो कि एक इदारे की तरह बैठ सकती है अपने, अगर ये एम्पावर्ड हो जाए। तो इसके नेबर बदल में हमें ये देखना पड़ा कि कहाँ पे हमें ऐसे अस्पताल मिल सकते हैं जहाँ बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा होते हों। तो वो जाहिर है कराची है, हम और कराची करीब भी है बलूचिस्तान से, तो हमने कराची में देखा। कराची में हमने जब रिसर्च की तो हमारी मिडवाइफ नहीं मिलके की, क्योंकि वही थे जिनको सब कुछ करना था, तो उन्होंने ये देखा कि कतर अस्पताल जो है औरंगी टाउन में है, और उसमें ऑलरेडी एक मिडवाइफरी प्रोग्राम वहां पे चल भी रहा था, ट्रेन कर रहे थे, डॉक्टर शेर शाह उसको चला रहे थे। तो वहां पे बहुत बड़ा अस्पताल है और क्योंकि फ्री है, चैरिटी है, गवर्नमेंट का है, तो बहुत उसका लेबर रूम बहुत बिजी था। तो उससे हमने फिर किया कि यहाँ पे आपको नंबर्स बहुत मिल रहे हैं और ट्रेनिंग भी है, तो जो कमी रुझान में हमें लग रही थी ट्रेनिंग के अंदर, वो हमने डिजाइन की 4 महीने के लिए, और 4 महीने में रिफ्रेशर कोर्स या कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया, और इन जो ऑलरेडी सर्टिफाइड मिडवाइफ थी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फिर हम कराची लेके आते थे और हमने इसको उससे शुरू किया, कराची से कतर अस्पताल में प्लेस किया, एनरोल किया। जब ये हमारा गुजर गया हर चीज से, और आईडीएसपी ने फिर अपना कराची में अपना ट्रस्ट भी बनाया है, और ट्रस्ट के साथ साथ अपना एक हॉस्टल बनाया है पूरा, जहाँ पे ये बच्चियां रहती हैं, इनके माँ बाप आते हैं, घर वाले मिलने आते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये प्रोसेस से गुजर गया तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साथ साथ हमारी बन रही थी और कायम हो रही थी, जो गवर्नमेंट ने हमें जमीन दिया 4 एकड़ यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट बनाने की। हमने उसके अंदर इनका कोर्स शुरू किया। उसके बाद जो मिडवाइफ्स हमारी 4 महीने से क्वालिफाई कर जाती हैं, फिर हम उनको लेते हैं हायर लेवल के लिए, लीडरशिप के लिए, जो 1 साल के लिए एनरोल करते हैं उनको मिडवाइफ एज अ कम्युनिटी लीडरशिप में। तो वो इस वक्त कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट।
अच्छा, तो आपने इसको यूनिवर्सिटी का नाम दिया जिसमें जो 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 पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोई मास्टर्स नहीं कर रहे, कोई बैचलर्स नहीं कर रहे, बल्कि वो मैट्रिक पास लड़कियां हैं जो हायर लेवल की लीडरशिप ट्रेनिंग ले रही हैं। 4 महीने का रिफ्रेशर कोर्स उनको आप कहते हैं, लीडरशिप कोर्स करवाती हैं, ताकि जब वो जाए अपने देहातों में वापस जाएं तो वहां पर अपने अपने क्लिनिक्स बनाएं और कम्युनिटी की खिदमत करें कॉन्फिडेंस के साथ, ये आप कह रहे हैं। तो इस पर तो आपने इसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी क्या होगी, इसको यूनिवर्सिटी के तौर पर कैसे रजिस्टर किया आपने, फिर आप इसको यूनिवर्सिटी कह रही हैं?
जी देखिए, आईडीएसपी जो है वो ये इंस्टीट्यूट पहले हमने वजूद में हम इसलिए लेके आए हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं एजुकेशन के, उनको ये अपने तजुर्बात अपने प्रैक्टिसेस की बिना पे हम चैलेंज करते हैं। हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है, एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आईडीएसपी उन सबको चैलेंज करता हुआ 22 साल से निकला है। तो जब हमारी ये आगही बनी तो हमने ये देखा कि जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं, तो वो उनका आइडिया क्यों नहीं एक डिग्री की तरह हो सकता, वो क्यों नहीं, जैसे एक आर्टिस्ट होता है, अगर वो अपनी पेंटिंग करता है या फिल्म मेकर अपनी फिल्म बनाता है तो वो उसकी वो ही उसका उस सर्टिफिकेशन होता है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज गिविंग नहीं है, नॉलेज क्रिएटिंग है। तो हमें स्पेसेस बनानी है, हमें स्पेसेस खोलनी है उन नौजवानों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो जिन्होंने इंटर नहीं किया, जिन्होंने बीए नहीं किया, जो नहीं करना चाहते, और किया भी था, अटेम्प्ट भी किया था, तो कोई हासिल नहीं हुआ, तो फिर क्या करें। तो इतनी बड़ी तादाद है जो कि जबरदस्त सोच विचार के लोग हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप एक एक लड़की का मिडवाइफ की अगर आप स्टोरी सुने, इन्होंने कोई अभी जो 2 साल पहले का जो डेटा है, कोई 28,000 से ज्यादा इन्होंने लाइव बर्थ्स किए कम्युनिटीज के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर, और मेरे ख्याल से एक कैजुअलिटी या एक डेथ हुई है, वो भी इसलिए कि वो बहुत देर से वो औरत पहुंची थी, और ये गवर्नमेंट के साथ बड़े करीब से काम कर रहे हैं हम लोग, ये लड़कियां गवर्नमेंट के साथ बहुत करीब से काम कर रही हैं।
प्रैक्टिकल करती हैं वो कतर हॉस्पिटल में करती हैं कराची में।
जी हाँ जी हाँ, पहले ये पहला काम जो देखिए, पहला तो इनका प्रोफेशनली दे हैव टू बी वेरी गुड इन देयर प्रोफेशन, प्रोफेशनली इनको साउंड किस चीज में होना है, माँ और बच्चे को दौरान है डिलीवरी हिफाजत के साथ प्रोसेस को करना, कोई बीमारी ना हो, कोई बाद में इन्फेक्शन, पहला काम तो ये है ना, असल में तो ये है प्रोफेशनल। तो ये काम कराची से करके आते हैं ये लोग पूरा 4 महीने, एक एक लड़की जो है वो 4 महीने में 50-60 डिलीवरीज करके आती है, हर किस्म की, पेचीदा वाली भी, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक भी, जो भी कुछ है, वो अपना खौफ निकाल देती है, कॉन्फिडेंस ले आ जाता है हर चीज के अंदर, दिखने में, रिकॉर्ड करने में, ओपीडी को देखने में, हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर जब माँ جاتی ہے, اس وقت اس کی دیکھ بھال پوسٹ نیٹرل اینڈ پری نیٹرل, اس سے یہ سب گزر کے جب آ جاتی ہیں واپس تو دے آر لائک بہت ہی کانفیڈینٹ, ایک پاورفل خاتون بن جاتی ہے وہ بچی, اور وہ اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے گھر سے آگے اپنے گھر ڈلیوریز ہوم ڈلیوریز بھی کرتی ہے, اپنے گھر میں بھی اس نے سینٹرز بنا رہے ہیں اور وہ اسے ارن بھی کر رہی ہے, انٹرپرینیور ہے وہ. ہماری تنخواہیں وغیرہ کوئی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں دیتے, ہم صرف ٹریننگ دیتے ہیں, بہت اچھی ٹریننگ, ٹریننگ پہ ہم بہت پیسہ لگاتے ہیں, اور اس بچے کی شخصیت سازی پہ بہت پیسہ لگاتے ہیں, اور اس کی ہیلتھ پہ ہم پیسے لگاتے ہیں, اس کی فزیکل ہیلتھ پہ پیسے لگاتے ہیں, کیونکہ اس کی حفاظت کرنا وہ ایک ادارے کی طرح سے اپنے علاقے میں بیٹھی ہے, اور وہی ایک ہے جو کہ ہر چیز کے لیے فوراً فرسٹ کانٹیکٹ ہے. وہ
2010 سے لے کر 2020 ہو گیا, 10 سال میں آپ نے 300 بلوچستان میں مڈ وائفس کو ٹرین کر دیا جو مختلف دیہاتوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں, اور جو ماں اور بچوں دونوں کو سیف کر رہی ہیں, ان کی زندگیاں بچا رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو مزید کیا کچھ کرنا چاہیے, جو چیز آپ نے پیدا کی کیا گورنمنٹ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یا آپ ان کے ساتھ مل کر کوئی نیا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے, اس سلسلے کو پریکٹس کے؟
جی ہاں, گورنمنٹ اس پورے کام کو بہت ہی انٹرسٹ سے دیکھ رہی ہے اور بہت سراہتی ہے, اور ہماری بہت ہمت افزائی کرتی ہے, ہمیں لسٹیں دیتی ہے لڑکیوں کی کہاں کہاں ضرورت ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہیں ہو, پھر ان بچیوں کو وہ کٹس پرووائڈ کرتی ہے, یہ مڈ وائفری کٹس, تاکہ وہ گھر سے کام کر سکیں, اور پھر اس کے بعد اگر وہ جب کیا پوزیشنز نکلتی ہیں تو پوزیشنز بھی دیتی ہے, اور پھر ان کو وہ بھی کرتی ہے, یہ اسٹائپنڈز بھی دیتے ہیں گھر پہ اگر گھر سے کام کر رہی ہیں لڑکیاں. تو ماشاء اللہ سے یہ ساری سب چیزیں تو ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اگر گورنمنٹ کا اور ہمارے یونیورسٹی کا اور آئی ڈی ایس پی کا, کیونکہ آئی ڈی ایس پی پہلے پریکٹسز سے اٹھاتا ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ لیڈرشپ میں لے کے آتی ہے, تو اگر یہ ہمارا ایک طرح سے ایک بڑا منصوبہ کوئی 5-6 سال کا یا 10 سال کا جوائنٹ منصوبہ بن جائے, اور ہم گورنمنٹ اور ہم مل کے ایک بڑے اسکیل پہ اس کی فنڈنگ لیں, تو بہت ہی ہم بلوچستان کو پورے کو ہم لوگ مل کے کور کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے, اور یہ جو شرح اموات جو اتنی زیادہ ہے ماؤں کی مرنے کی بلوچستان میں, یہ ہائیسٹ ہے, بہت ہائی ہے, پاکستان میں تو ہائیسٹ ہے اور کہتے ہیں ایشیا میں بھی آلموسٹ ہائیسٹ ہے, تو یہ ہم کنٹرول, اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, اور مشکل نہیں ہے کرنا, اسسٹنٹس بن گئے سارے کراچی سے لے کے اور بلوچستان تک, سارے نظام بن گئے, ریزیڈینشیل نظام بن گئے, کورس بہت اچھا ہے گورنمنٹ کا مڈ وائفری کا, اور گورنمنٹ بہت کمیٹیڈ ہے اس کے اندر کرنے کے اندر, مگر یہ اگر اس طرح سے کوئی ایک چیز بن جائے, باقاعدہ ایک پروگرام بن جائے, تو یہ والا حصہ ہم کور کر سکتے ہیں, اور جو ان کو آگے کمیونٹی کو اور ریفرل سسٹم کو جو چلانا ہے وہ گورنمنٹ کر سکتے ہیں.
تو COVID-19 کے دوران اب سب کچھ تو آن لائن ہو رہا ہے, تو یہ کام کیسے آن لائن ہو رہے ہوں گے؟
جی ہاں, یہ ہمارا, اب آپ جب بات کریے گا, ہماری جو انسٹرکٹرز ہیں, جو فیکلٹی ہماری, وہ آن لائن کورسز ہمارے چل رہے ہیں لیڈرشپ کے, اور اس کے اندر کووڈ کے اوپر پورا ان کا ایک کورس ہوا ہے آن لائن, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہر لڑکی کے پاس, میرے خیال سے ہر لڑکی نے اپنے گھر کے, ہر مڈ وائف نے اپنے گھر کمیونٹی کے کوئی 25 گھر خاندانوں کی اس نے ذمہ داری لی ہے, اور میکسیمم 50 ہیں, اور جن کا وہ جا کے اور اس جن کو انہیں کووڈ کے بارے میں اورینٹیشن دینا, ان کا پورا ڈیٹا لینا, اور ان کا حالات دیکھنا, پریگننٹ عورتوں کو کیسے سنبھالنا ہے, اور گھر کو کیسے سنبھالنا ہے, ڈسٹینسنگ کیسے کرنی ہے, کیا کووڈ ہے کون اور کیا کووڈ نہیں ہے, تو انہوں نے کوئی 5 ابھی تک کوئی میرے خیال سے 5,000 سے زیادہ یہ لڑکیاں انڈیویجلس کو پہنچ چکی ہیں اپنے علاقوں میں یہ آگہی کے لیے, اور پھر اسی دوران میں یہ ڈلیوریز کرا رہی ہیں اپنے, بڑا کسی کو کہیں جانا نہیں پڑتا, یہ وہیں کمیونٹی کے اندر ہی گھر کے اندر ڈلیوریز ہو جاتی ہیں, ورنہ آپ سوچیے آج کل کیسا ہوتا اگر یہ مڈ وائز ہماری اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی اور ان کو ڈر نہ ہوتا اکیلے ڈلیوری کرانے کا, اب اکیلے خود ڈلیوریز کرا رہی ہیں, ان کے دماغ میں کمرشل, وہ اپنے کام کو صرف پیسے بنانے کا دماغ میں تصور نہیں ہے نا, تو یہ ہم کہہ رہے ہیں دس از کمیونٹی ڈیولپمنٹ. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر آپ اپنے ہنر اپنے ہر چیز سے اس لیے نہیں کرتے کہ پیسے بنانے, اس سے پیسے تو بائے دفعہ آتا ہے نا, لیکن اپ فرنٹ تھوڑی آتا ہے کہ हमें ये अब आ गया स्किल, अब इससे पैसे बनाते हैं। आप किससे पैसे बना रहे हैं? आगे आगे दूसरे वाले के पास खाने को नहीं, आप उससे कह रहे हो कि पहले पैसे दो। इस वक्त औरत किस से गुजरती है और क्या मजबूरियां, और दूर दराज पहाड़ों में कोई रास्ते नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, उस वक्त आप क्या पैसों की बात करेंगे किसी से? तो इस किस्म के लोगों के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी है। ये जब तक ये लोग हैं, यही लोग पढ़ाने वाले हैं, यही लोग आगे दूसरों को सिखाने वाले हैं, यही हमारे टीचर्स हैं, यही हमारी फैकल्टी है। बेशक 10वीं पास है, बेशक 12वीं पास है, बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन आला इकदार है, आला प्रैक्टिस है, और ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे उस्ताद हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ,
बेहद शुक्रिया कुरतुलैन बख्तियारी साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे सुनने वालों को एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, हसास किस्म के मौजू पर बड़ी दिल को लगने वाली बातें सुनने वालों तक पहुंचाई कि ये ख्वातीन जो कि मैट्रिक पास हैं सिर्फ, लेकिन वो जो किरदार अदा कर रही हैं वो गालिबन किसी भी एतबार से किसी भी हाई डिग्री वाले डॉक्टर से कम किरदार नहीं है। वो भी उसी तरह जिंदगियां बचा रही हैं जिस तरह के हाईली क्वालिफाइड बैरूनी मुल्कों से पढ़े हुए डॉक्टर जिंदगियां बचाते हैं, उसी तरह ये ख्वातीन भी वही रोल प्ले कर रही हैं। और इनकी इसकी इस रोल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ आप जैसे इदारे भी हैं और जो ये काम कर रहे हैं कि उनको मौके फराहम कर रहे हैं, उनमें लीडरशिप के स्किल्स जो कि एक्सपोजर यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर से जो लीडरशिप स्किल्स आते हैं वो आप उसके लिए आपने ये यूनिवर्सिटी कायम कर दी कि उसकी कमी ना रह जाए, वो भी इनको दे दो स्किल्स इनके पास ऑलरेडी हैं, सिर्फ एक्सपोजर चाहिए एक यूनिवर्सिटी का, वो आपने उनको फराहम कर दिया। तो बेहद शुक्रिया, हमारी दुआ कि आप इस काम को जारी रखें और हजारों लाखों लड़कियां पाकिस्तान में जो सिर्फ मैट्रिक पास हैं उनके लिए ये एक बाइज्जत शोबे के तौर पर, एक बाइज्जत प्रोफेशन के तौर पर सामने आए और लोग जो फख्र से इस शोबे को अपने लिए चुने एज प्रोफेशन।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हन्ना कैंपस क्वेटा की इंस्ट्रक्टर और फैकल्टी मेंबर अतिया बीबी, जो IDSP के जो प्रोग्राम है मिडवाइफरी प्रोग्राम उसमें असिस्टेंट मैनेजर भी हैं और जाहिर है कि यहाँ की फैकल्टी मेंबर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतिया बीबी साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम।
बीबी साहिबा बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में जो कि हन्ना कैंपस है और कम्युनिटी डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसमें आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चियाँ मास्टर्स करने आती हैं?
हमारे अभी तक हमने ग्रेजुएट किए 300 स्टूडेंट्स को, हम इनको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पढ़ाते हैं और साथ में हम इनको कंप्यूटर की भी क्लासेस देते हैं ताकि वो जो प्रैक्टिस वो करते हैं या उनको हम इनको मटेरियल्स के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं और दूसरा ये हम इनको डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि जो हमारा ज्यादा वो जो प्रोग्राम है ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस है, तो हम इनको मुख्तलिफ वीडियोज वगैरह ये डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं ताकि वो प्रैक्टिस के लिए जब जाते हैं तो उनको आसानी हो, ताकि उनको कोई मुश्किलात ना हो। तो हम ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी रिफ्लेक्शन डायरी ये चीजें हम ज्यादा स्टूडेंट्स से करवाते हैं ताकि वो कहीं और जगह जाए, उनके अंदर से ये खौफ है ये खत्म हो जाए। तो ज्यादा हम डेली बेस पर हम जो आज पढ़ाते हैं तो कल हम उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन करते हैं।
तो ये सारी जो खवातीन आपकी कैंपस में आती हैं, बेसिकली ये सब मिडवाइव्स होती हैं, सर्टिफाइड मिडवाइव्स होती हैं और 2 साल का पूरा डिप्लोमा करके मिडवाइफ बन चुकी होती हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप उन्हें वो कॉन्फिडेंस देती हैं और उनका वो डर और खौफ जो कि खुद काम करने से आता है वो दूर करने के लिए उनको आप ट्रेनिंग देती हैं, और उसके बाद फिर क्या उनको हॉस्पिटल्स में फिर लेकर जाती हैं? कौन से हॉस्पिटल में?
इनको अगर हम लोग दोनों तरफ है, कोयटा में भी इनको प्रैक्टिस करवाते हैं और कराची में भी करवाते हैं। कोयटा में हम बीएमसी में लेकर जाते हैं और कराची में हम कतर हॉस्पिटल में इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि वहां पर कराची में ज्यादा जो सीएमडब्ल्यू को उनको ज्यादा वो प्रैक्टिस पर फोकस देते हैं और उनको अहमियत भी ज्यादा देते हैं।
तो एक जो मिडवाइफ है वो अपने कोर्स के दौरान, और ये कितने महीने का कोर्स होता है आपके यहाँ?
हमारे यहाँ 3 महीने का भी होता है और अभी ये है ये 1 ईयर का कोर्स है जो MLCD का कोर्स है।
इसमें ये
बेसिक भी होता है।
इसमें क्या होता है, 1 साल के कोर्स में क्या होता है?
इसमें हम लोगों ने इनको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करवा दी, क्योंकि इन लोगों ने पहले से पढ़े हैं ना, तो हम मजीद इसमें जैसे थ्योरी में तब्दीली आती रहती है, थ्योरी चेंज होते हैं, उनके पास जो नॉलेज है प्रैक्टिकल में भी, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के नाम चेंज होते हैं, कंपनी चेंज होता है, तो प्रैक्टिस के लिए हम उनको इसलिए लेकर जाते हैं कि वो मजीद और उनके पास मालूमात हो, ताकि वो पुराने वाली चीजें हैं वो उनके पास है लेकिन और नॉलेज में इनका इजाफा हो, ताकि वो डॉक्टरों से मिले, जैसे अभी कोरोना वायरस के हवाले से है और इन्फेक्शन के हवाले से है, इनको हम मजीद डिटेल से पढ़ाते हैं। जो बेसिक कोर्स है उसमें इतना मजीद डिटेल से नहीं पढ़ाते हैं टॉपिक्स, सिर्फ बेसिक चीजें इनको सिखाते हैं।
सही सही। अच्छा, फिर हर लड़की को कितनी डिलीवरीज करनी पड़ती हैं इस कोर्स के दौरान, जिससे वो उनका डर और खौफ निकल जाता है कि वो अपने देहातों में जब वापस जाती हैं तो फिर आराम से अकेले ये परफॉर्म कर लेती हैं?
हमारा टारगेट है 50 ना, उनको 50 से, अगर उनको मौका मिले, कुछ लोगों को मौका मिलता है तो वो 50 से अबव भी करवाते हैं।
अच्छा,
कभी 85 है, 75 है, इतने यहाँ तक भी इनके टारगेट जाते हैं।
ये जो लड़कियां हैं, हर साल आपने कहा कि आपके कैंपस से 30 लड़कियां निकलती हैं, मुख्तलिफ चीजें
साल में 30 है, 40 है, 50 है, इसी तरह निकलते हैं।
ठीक। और जब ये लड़कियां आपका कोर्स मुकम्मल कर लेती हैं तो फिर इनको अपने और आपको क्या फैसिलिटेट करती हैं, इनको कुछ सपोर्ट करती हैं कि ये जाकर जब अपना क्लिनिक खोलें या काम करें तो इनके पास कुछ सब कुछ हो, टूल्स हो?
जी मैम।
वो क्या करती हैं?
जी, जैसे यहाँ से वो लोग फारिग होते हैं तो हम इनको एक किट देते हैं, तो इनको हम किट देते हैं ताकि वो अपने लिए होम सेंटर खोले और अपने कम्युनिटी में काम करें, और इनके मुख्तलिफ लिंकेजेस बनाते हैं, जैसे PPHI है, MNCH है, VRSP है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम उनके लिंकेजेस बनाते हैं, ताकि वो अगर ट्रेनिंग हो, अगर उनको और मालूमात चाहिए या उनको और किट्स या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो तो हम इन लोगों से इनके लिंकेजेस बनाते हैं, फिर वो अपने लिए।
तो उस किट में क्या होता है?
उसमें पूरा है, डिलीवरी किट है, बीपी ऑपरेटर्स है और वेट मशीन है उसमें, और मैकिंटोश है, ड्रॉ शीट है, जो पूरा किट है जैसे हम।
तो क्या आप उन्हें क्या देखा कि वो अब जब देहातों में जो गई हैं 300 लड़कियां आपके इस कैंपस से निकलकर, वो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है?
28,595 सेफ डिलीवरी करवाए हैं।
और ये डेटा कब का है?
ये 2017 का है, 17-18।
28,595 डिलीवरीज कराई और वो सब कामयाब रही?
जी मैम।
तो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद भी उनको वो देते हैं कुछ मदद?
बाद में भी देते हैं, पहले एंटीनेटल केयर देते हैं, बाद में पोस्टनेटल केयर देते हैं।
तो ऐसे कोई तरह नहीं मिली कि किसी मिडवाइफ की वजह से, कि किसी गलत काम से की वजह से या कोताही की वजह से कोई नुकसान हुआ हो किसी बच्चे या माँ का?
नो मैम, अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने मिडवाइफ्स को पहले से, हम लोग उनको पूरे इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके पास अगर डिलीवरी आए तो पहले आप उस एंटीनेटर में आप उसके पूरे रिकॉर्ड चेक करें ना, पूरा इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारे, अगर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स हैं आप उसको हैंडल नहीं कर पाते वो फौरन रेफर करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, या तो उस पेशेंट के पास साथ वो लोग खुद जाते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं उठाते, वो अपने पास नहीं रखते हैं मिडवाइफ।
अच्छा,
उनको फौरन रेफर करते हैं
और खुद लेकर जाती हैं उनके पास फिर जहाँ?
जी मैम, उनके साथ ही जाते हैं वो, जहाँ मिसाल है कोयटा हो या खुशदाराना हो या उनको करीबी कोई हॉस्पिटल हो, तो वो पेशेंट के साथ खुद जाते हैं, उसको पूरा डिलीवरी करवा के उसको सेफ हॉस्पिटल में रह के उसकी डिलीवरी करवा के उसको पोस्टनेटल केयर दे के फिर उसको घर लेकर आते हैं।
बहुत बहुत खूब। आतिया बीबी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हन्ना कैंपस में इंस्ट्रक्टर हैं और बेहद शुक्रिया अतिया बीबी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं। और अब हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के कराची के कैंपस में मौजूद हैं रुबीना उस्मान, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस कैंपस में, और ये तफसील से बताएंगी कि ये कैंपस किस तरह काम करता है और यहाँ पर जो मिडवाइफ्स आती हैं वो क्या क्या कुछ सीखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना उस्मान साहब।
जी वालेकुम सलाम।
तो ये बताइए कि इस कैंपस में जो कराची में है वो उसमें क्या क्या कौन कौन सी मिडवाइफ्स आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं और उसमें उनको क्या क्या सिखाया जाता है और उसके कितने हिस्से हैं या कितनी ब्रांचेज हैं, कैसे रहती हैं, सारा कुछ तफसील से बताइए।
आईडीएसपी बलोचिस्तान में काम करता है और बलोचिस्तान से जो यंग मिडवाइफ्स होती हैं उनके पास स्टेजी तो थ्योरी तो होती है लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नहीं होता, तो फिर वो लोग आईडीएसपी मिडवाइफ्स को लेके कराची आते हैं और कराची में फिर उनकी 3 महीने की 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है कतर हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल करते हैं लेबर रूम और ओपीडी मतलब क्लिनिक एरियाज में प्रैक्टिकल करते हैं और वहां पर वो इन 3 महीनों के अंदर 50 डिलीवरीज करवाते हैं जिसमें एपी स्टिच भी होता है, एपी स्टिच भी करते हैं और अदर केसेस भी करते हैं और वहां पर रहते हुए वो और फिर वो अपने पास नोट करती हैं, फिर वो दोबारा जाके अपने कम्युनिटी में वहां पर जाके सर्विसेज देती हैं और फिर वहां पर वो खुद इंडिपेंडेंटली मिडवाइफ्स काम करती हैं। और इस वक्त हम लोग बलोचिस्तान आईडीएसपी की मिडवाइफ्स बलोचिस्तान के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं।
और कितनी है?
मोर देन 300।
तो क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने क्लिनिक्स चला रही हैं या किसी के साथ मिलकर या हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं?
कुछ जो है उन लोगों के अपने होम सेंटर हैं और कुछ जो है वो किसी और के साथ मिलके जैसे किसी के क्लिनिक में चले गए वहां पर, और जब पेशेंट अगर उनके पास कोई होती है तो फिर वो पेशेंट के घर जाके वहां पर मतलब उनको सर्विसेज देते हैं, अगर कोई डिलीवरी केस आ जाए कुछ आ जाए तो फिर वो पेशेंट के घर भी जाती है। और होम सेंटर है लेकिन सबके नहीं।
कोविड-19 के दौरान कुछ बताइए कि इनका क्या रोल है मिडवाइफ्स का, खासतौर पर देही इलाकों में जहाँ के वैसे भी हॉस्पिटल्स कम होते हैं।
पहले तो हम लोगों ने उनके मतलब ऑनलाइन सेशंस दिए थे, ऑनलाइन उनको इस तरह सेशन लेते थे कि जब आपके पास पेशेंट आए तो आपको डिस्टेंस रखना है और पेशेंट को इतनी नॉलेज देनी है कि वो मास्क पहने और हैंड वॉश करे और कितना डिस्टेंस और अपने मतलब घर पे कैसे केयर कर सकता है। तो इन लोगों ने कम्युनिटीज में सेशंस भी लिए और जो जो इनके पास पेशेंट आए उनको भी बताया, और अभी जब ये लोग मतलब इनके पास कोई पेशेंट आता है तो वो खुद भी ग्लव्स मास्क वगैरह पहन के फिर पेशेंट का चेकअप करते हैं। और कल जैसे मेरे किसी से एक मिडवाइफ से बात हुई जो कि नसीराबाद की है, अभी इस कोविड के ड्यूरिंग कोविड उसने 35 केसेस करवाए, तो वो बता रही थी कि हम मतलब मास्क और ग्लव्स और एप्रन का यूज जरूर करते हैं और ये फिर पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को भी मतलब उनको बताते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं।
तो उन्हें ये पता लगता है कि ये जो पेशेंट आया है ये कोविड में तो नहीं है, वो टेस्ट भी करते हैं?
टेस्ट पहले करवा देते हैं, जैसे मैसेजेस आता है तो वो पेशेंट के मतलब काफी जगह जहाँ पर अभी तो ऐसा है कि कोविड के तो हर जगह पे टेस्ट हो रहे हैं और स्टार्ट में जब नहीं थे तो फिर वो अपनी केयर करते थे और अब जब हैं तो फिर वो पहले से जो जो उनकी पेशेंट होती है उनके टेस्ट करवा देते हैं और आगे उनको मैसेज दिखाते।
टेस्ट के रिजल्ट के बाद उनको दाखिल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कोविड की कोई पेशेंट्स आई और उन्होंने उनको अटेंड नहीं किया या मुश्किल हुई?
नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। और फिर ये कि वहां पर तो पेशेंट भी मतलब ज्यादातर एंड टाइम पे आते हैं, इतना उनको टाइम नहीं लगता मेरे ख्याल में कि 1-2 दिन उनको वहां रुकना पड़े, स्टे करना पड़े।
कुछ हमारे सुनने वालों को बताइए, वो लड़कियां जो सुन रही हैं इस वक्त आपका प्रोग्राम, जो मैट्रिक पास हैं, देहातों में रहती हैं, उनको बताइए कि मिडवाइफ की जो ट्रेनिंग है उसके क्या फायदे हैं और वो क्यों घर में बैठने की बजाय इस कोर्स को क्यों ना करें?
मिडवाइफ की ट्रेनिंग का ये फायदा है कि कम से कम जो हम मतलब जो लोग देहातों में रहते हैं कम से कम उन्हें ये तो एक नॉलेज होती है कि अगर उनके घर पे कोई पेशेंट है हाई बीपी का, तो उसका बीपी तो हाई नहीं हो गया, या कोई लो बीपी का, उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट का बीपी हाई होता है, उसे फिट्स पड़ रहे होते हैं और लोग उनको लेके जाते हैं मजारों पे या पीर बाबा पता नहीं कहाँ कहाँ के, इसको कोई पता नहीं क्या हो गया, कोई रूहानी मसला ही हो। तो सबसे पहले ये चीजें कि जब हमें नॉलेज होगी तो हम अपनी फैमिली को नॉलेज देंगे। और इसके अलावा के ऐसी पेशेंट्स आते हैं जिनको मतलब रेफर करने में बहुत टाइम लगता है, जब उनको अगर बीपीएच उनका हो जाए या एपीएच हो जाए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है बलोचिस्तान का। और जब पेशेंट रेफर करते हैं तो फिर उनकी मतलब रास्ते में ही उनकी डेथ्स हो जाती है, अमवात हो जाती है। इसी वजह से बलोचिस्तान में शराय अमवात भी ज्यादा है। तो अगर मतलब एक एक देहात में एक गाँव में अगर 10-12 मिडवाइफ्स हों और वो सही से काम करें, अपनी फैमिली को फैसिलेट करें, अपनी फैमिली को इस बारे में समझाएं कि हॉस्पिटल जाना कोई बुरी बात नहीं है, या फिर अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो वो उसकी मतलब नीड इसलिए ऐसा नहीं कि डॉक्टर खुद से करें। और फिर अगर उसको किसी अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा एनीमिया के तो फिर उसको पहले से किसी हॉस्पिटल में अपना कार्ड वगैरह बनवाना चाहिए ताकि उसको उस टाइम मुश्किल ना हो, जिसको अभी हम सब लोग मतलब जितने भी बलोचिस्तान के लोग हैं दूर दराज एरिया में इस मुश्किल से गुजर रहे हैं कि हम जब पेशेंट को लेके जाते हैं या तो उसकी डेथ होती है या फिर ये होता है कि पेशेंट को फिस्टुला हो जाता है। तो कम अज कम इन दो चीजों से हम महफूज रहेंगे, क्योंकि अगर एक माँ की जान जाती है तो फिर पूरा घर बर्बाद होता है।
तो और अगर जो लड़कियां बैठी हैं देहात में, फारे हैं, पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी बहुत मैट्रिक तक हैं, वो अगर ये कर लें, कोर्स कर लें 2 साल का, तो उनके लिए वहां पर इदारे मौजूद हैं नजदीक जहां वो पढ़ सकें, ये मिडवाइफ का कोर्स कर सकें?
जी, इदारे तो है, मतलब गवर्नमेंट के काफी सारे, मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट के कोई 15 डिस्ट्रिक्ट में इदारे काम कर रहे हैं, स्कूल हैं उनके तुर्बत में, पिशीन में और पंजगूर में, इन जगहों पे तो हैं स्कूल हैं। इसी तरह नसीराबाद और सिंधी में भी हैं। तो ये ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर नीड है कोर्सेज करने की, मतलब लड़कियों को बाहर निकलने की, और खासतौर नसीराबाद, जल मक्सी, इन जगहों पे तो बहुत ज्यादा नीड है। तो अगर हम ये सोच रखेंगे अगर ये हम कोर्स करें सिर्फ अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो 100 घर हैं, अगर 100 घर में से हम 50 घर को भी अपनी सर्विसेज दें तो फिर शायद बाकी लोग देख के, एक होता है ना कि लोग देखते हैं कि हाँ भाई इसने ये किया तो इसका ये रिजल्ट आ गया, तो वो एक रोल मॉडल बन जाएगी और फिर इसी तरह दूसरे लोग उनको देख के बाहर निकलेंगे, दूसरी लड़कियां।
बेहद शुक्रिया रुबीना उस्मान, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप कराची में हमारे साथ मौजूद थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के कैंपस में, जो के होती हैं मिडवाइव्स होती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देता है, उनको पढ़ाता भी है, आप उसकी इंस्ट्रक्टर भी हैं और आप वहाँ की प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी मिडवाइफ फ्री स्कूल मलीर की प्रिंसिपल तस्मीना कादरी। उनसे पूछते हैं कि इनका जो स्कूल है हैंड्स का, हैंड्स के तहत जो चल रहा है स्कूल, इसमें कितनी मिडवाइफ्स पढ़ती हैं, उनको किस तरह पढ़ाया जाता है, उनके टीचर्स कौन हैं, और यहाँ से पढ़ने के बाद उनका क्या फ्यूचर क्या होता है। तो बात करते हैं तस्मीना साहिबा, कुछ बताइए कि ये स्कूल आपका कब से कायम हुआ और इसमें क्या सिस्टम है, कितनी मिडवाइफ्स पढ़ती हैं, कहाँ से आती हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प होती है इस स्कूल में?
हमारा मैम स्कूल जो है 2002 से स्टार्ट हुआ है ना, जो कि रूरल एरिया में काम करे, मलहीर के रिमोट एरिया में काम करे, और हम लोग जो है कम्युनिटी मिडवाइफरी की वो स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक पास होती हैं, और रूरल से हम उनको लेते हैं एडमिशन के लिए। इनको तकरीबन ये पहले 18 मंथ्स का कोर्स था, अभी ये 2 ईयर्स का हो गया है, जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, और इनको यहाँ पे हम 2 ईयर्स तक हॉस्टल में ही रखते हैं, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, और यहाँ पे हम इनको थ्योरी पढ़ाते हैं, और उसके अलावा इनका प्रैक्टिकल होता है। 25% जो है इनकी थ्योरी थ्योरी होती है, 75% इनका प्रैक्टिकल होता है। इनको हम जो है डिलीवरी, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, फैमिली प्लानिंग और वैक्सीनेशन और जो फर्स्ट एड होते हैं, ये हम इनको स्किल्स देते हैं। और ये अपनी कम्युनिटी में जाके जो है पास आउट होने के बाद जो है वहाँ जाके एक छोटा सा क्लिनिक रन करती है, वहाँ पे मदर और चाइल्ड पे काम कर रही होती है। पर ईयर हम 30 स्टूडेंट जो है वो लेते हैं।
अच्छा, तो
पहले तो हम यहाँ सिखाते हैं उनको डमीज पे, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ सीख जाती है स्किल तो उसके बाद जो है हम रियल पेशेंट पे उनको।
तो इनके इनके इम्तिहान का फिर तरीका क्या होता है, कौन इनका इम्तिहान लेता है, कैसे रिजल्ट आता है, कैसे इनको सर्टिफिकेट मिलते हैं?
मैम, इनके इम्तिहान में हम इंटरनल एग्जाम लेते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं ना। एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है वो सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है, जो नर्सिंग का बोर्ड है वो ले रहा होता है एक्सटर्नल में, और इंटरनल में हम फैकल्टी ले रही होती है।
तो वो जो 300 आपके पास से गई है वो इस वक्त कहाँ है?
वो कुछ तो हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, ज्यादातर जो है अपने ही कम्युनिटी में क्लिनिक रन कर रही है।
और वो अंदाजन हर लड़की जो है कितनी ख्वातीन को बच्चे की पैदाइश में मदद कर रही है इस वक्त एवरेज?
जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना तो उस दौरान इनका टारगेट होता है, तो वो टारगेट उनको कंप्लीट करना होता है ना। जैसे एंटीनेटल का टारगेट है कि आपने जो है इतने एग्जामिनेशन करने, इतनी एंटीनेटल करने, तकरीबन 50 तक एग्जामिनेशन और एंटीनेटल और 20 डिलीवरीज करानी है।
अच्छा।
तो इनका ये टारगेट होता है, लेकिन जिस कम्युनिटी में वो काम कर रही है वो फिर डिपेंड की जाती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पे फैसिलिटीज, अगर और कोई फैसिलिटीज है हेल्थ की तो ज्यादातर तो आपको पता है कि हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल में जो है रेफर होते हैं। लेकिन अगर ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे जो है हेल्थ की फैसिलिटीज दूसरी नहीं है तो फिर वो इनके पास पेशेंट आते हैं।
मतलब ये पूरी माहिर होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो देहात में तो ये सबको हैंडल कर लेती हैं।
जी कर लेती हैं।
तो बहुत शुक्रिया तस्मीना कादरी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप कम्युनिटी मिडवाइफ फ्री स्कूल मलीर की प्रिंसिपल हैं, बेहद शुक्रिया।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
हमने इस वक्त अपने प्रोग्राम में दावत दी है फैसलाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल कुलसुम अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम अख्तर साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम।
कुलसुम साहिबा, कुछ बताइए कि इसका आपके कॉलेज का नाम तो है फैसलाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो क्या इसमें जो मिडवाइव्स हैं वो किस तरह इसमें एंट्री लेती हैं?
वो ऐसा है कि पहले जनरल नर्सिंग करती हैं, 3 ईयर डिप्लोमा होता है, और उसके बाद फिर जो 4th ईयर उनका होता है वो मिडवाइफ थ्री का होता है, नर्स मिडवाइफ। वो एक अलग से कोर्स है लेकिन इसी के अंदर इंक्लूडेड है। जब तक वो ये नहीं करती तो उनको जॉब नहीं मिल सकती एज अ चार्ज नर्स या स्टाफ नर्स।
मिडवाइफ को अलग से दाखला नहीं मिलता इस कॉलेज में?
नहीं, हमारी अपनी स्टूडेंट्स जो होती हैं यहाँ से फारिग हुई 3 ईयर डिप्लोमा करके, उन्हीं को हम आगे लेके जाते हैं मिडवाइफरी कोर्स के अंदर।
तो फिर वो, लेकिन वो नर्सिंग, वो जो नर्सेज हैं वो तो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, तो कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं होता आपके कॉलेज में?
नहीं, कम्युनिटी के लिए काम हो रहा था हमारे कॉलेज में। 2007 से एक लॉन्च हुआ था प्रोग्राम CMW कम्युनिटी मिडवाइफ के नाम से, और वो 2 ईयर पहले वो था 18, फिर 2 ईयर का हो गया। तो वो बहुत सारी नर्सेज मिडवाइफ्स प्रोड्यूस हुई है CMW, और उन्होंने बड़ा कम्युनिटी को जो एक सहारा दिया है, और बहुत उन्होंने माओ को और बच्चों को देखा है। लेकिन वो प्रोग्राम अब हमारा एंड हो गया, ये लास्ट हमारा बैच था जो कि अब बस खत्म है।
तो क्या वजह, इसको क्यों खत्म किया गया?
ये एक्चुअली हमारा पाकिस्तान का नहीं था, ये पहले भी WHO ने इसको स्टार्ट किया था, उनके ताबुन के साथ फिर हमारे टीचर्स ने इनको फैसिलिटेट किया, मिडवाइफ को ट्रेन किया, और काफी उन्होंने भी इसमें हेल्प आउट किया।
लेकिन वो जो मिडवाइफ थी, वो जो WHO का प्रोग्राम था उसकी जो मिडवाइफ थी वो आपके कॉलेज में पढ़ती थी या उनके लिए अलग कोई इंस्टीट्यूट था?
जी, हमारे कॉलेज में। नहीं, हमारे कॉलेज में।
अच्छा, उनकी बाकायदा क्लासेस होती थी। और कितने साल का, कितने साल
उनकी आप देख लें, 2007 से अब तक ये 13 साल,
तो कितनी प्रोड्यूस हो गई
वो प्रोग्राम,
और हर साल कितनी होती थी अंदाजा?
हर साल जो है 25।
तो और वो कितने साल का होता था उनका कोर्स?
2 ईयर
ٹو ایئرس کے بعد وہ مڈ وائف بن جاتی تھیں, کمیونٹی مڈ وائف
بن جاتی تھیں.
اچھا, تو ان کو کہیں جاب
وہ ٹرینڈ ہوتی تھیں اور جاب ان کو گورنمنٹ میں نہیں دیتے تھے, ان کو گھروں میں کہتے تھے کہ اپنی کمیونٹی میں جا کے سرو کریں. باقاعدہ ان کو 6,000 جو ہے وہ اسٹائپنڈ یا پے یا جو بھی کریں وہ ملتا تھا, باقی جو انہوں نے ڈلیوریز کرنی ہے تھوڑا بہت وہ کوئی ان سے بھی لے ہی لیتی ہوں گی. یہ ہے کہ کافی جو ہے نا برڈن کم ہوا تھا ہاسپٹل سے.
تو اب کیا سمجھتی ہیں اب جب یہ مڈ وائف کو انہوں نے ختم کر رہے ہیں, کورس ہی ختم کر رہے ہیں, پروڈیوس ہی نہیں کریں گے کمیونٹی مڈ وائف, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا کیا نقصان ہوگا دیہی علاقوں میں؟ خاص طور
پر دیہی علاقوں میں ماں بچہ جو ہے وہ سفر کرے گا, لوگ اتنے نہیں ہیں ویل ایجوکیٹڈ کہ وہ ہاسپٹل میں آئے ہیں. اکثر لوگ وہاں سے یہ چھوٹی موٹی دائیوں سے جو انٹرینڈ سی ہوتی ہیں کسی کے پاس بیٹھ کے تھوڑا بہت کام سیکھ لیتی ہیں, تو ان سے پھر وہ کروائیں گے ڈلیوریز اور پھر بس خراب ہی مسئلے ہونے ہیں. یہ کہ یہ پڑھی لکھی تھیں ایجوکیٹڈ تھیں, پھر ٹو ایئر ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, ضرور اچھی ٹریننگ ان کو کرواتے.
بہت بری صورتحال ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی مڈ وائف جو کہ ایک بڑا خدمت کر رہی تھیں, ان کی تعلیم ڈگری اور ان کی تربیت کا تمام سلسلہ, ان کی ٹریننگ کا سلسلہ اب ختم ہو گیا, جو کہ پہلے بھی ڈبلیو ایچ او ہی کر رہا تھا, اس میں گورنمنٹ اس حد تک انوالو تھی کہ وہ کالج میں ان کو کلاسز دینے کی اجازت.
بالکل, کلاسز دینے تھے, ٹیچرز دیے ہوئے تھے ان کو, اور
بلڈنگ کوئی نہیں تھی ان کی الگ سے.
نہیں, لیکن کہیں کہیں بلڈنگ بھی بنی ہے, ادھر ہمارے
بی ایچ شکریہ کلثوم اختر صاحبہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ فیصل آباد کالج آف نرسنگ جو ہے جس کی آپ پرنسپل ہیں کس طرح کمیونٹی مڈ وائف کو ٹریننگ دیتا رہا ہے اور اب یہ کورس ختم ہو گیا ہے, جو ایک اچھی خبر نہیں ہے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ, اور اب ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں خران سے جو بلوچستان کا ہی ایک علاقہ ہے, اور وہاں سے گل محمد ہیں جو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ میں فیلڈ آفیسر ہیں, اور یہاں کے دیہاتوں میں ان کا رابطہ رہتا ہے اسکولوں کے حوالے سے بھی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو مڈ وائفس یہاں پر کام کر رہی ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں اور ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں اور یہ ان کی کیا ہیلپ کرتے ہیں اگر کچھ کر سکتے ہیں. تو وہاں سر کچھ بتائیے کہ آپ جن دیہاتوں میں جاتے ہیں بلوچستان کے, وہاں پر جو خواتین ہیں جب وہ ماں بننے کے مراحل سے گزرتی ہیں تو ان کی مدد کے لیے کیا سسٹم موجود ہے؟
یہاں پہ دور دراز میں کوئی خاطر خواہ کوئی وہ نہیں ہے, سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ ڈلیوری کے ٹائم کیا کہتے ہیں دس ڈیفیکلٹیز کو فیس کر سکیں. زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کو بلڈ کی وجہ سے اموات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو یہاں پر ٹرینڈ آئی ہیں ان کا کیا رول ہے؟
ان کا رول ہے کہ ان کے ٹریننگ کے بعد ابھی اموات کم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ادھری جاتے ہیں قلعوں میں دیہاتوں میں, ادھری ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت کم ہو گیا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں اس طرح کے اور مطلب ٹریننگ ہو جائے, اس طرح کے اور بھی لیڈیز مطلب کام کر سکے تاکہ سب کو فوکس کیا جا سکے.
تو زیادہ تر یہاں جو خاران کے دیہاتوں میں خواتین ہاسپٹلز میں اپنی ڈیلیوریز کرا رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں یا گھروں میں ہی ہوتے ہیں؟
زیادہ تر گھروں میں ہوتا ہے, جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں وہ پھر ہاسپٹل میں ریفر ہوتے ہیں.
تو ہاسپٹلز کتنی دور ہوتے ہیں یہاں سے دیہاتوں سے؟
وہ کلو میٹرز کے حساب سے ہیں, مطلب نزدیک کے جو قلیاں ہیں دیہاتیں ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں, جو دور ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں.
تو ہم نے یہ سنا کہ راستے میں اموات ہو جاتی ہیں ہاسپٹل
جاتے ہیں. جی بالکل.
تو کچھ اندازہ
دیہاتوں سے یا مطلب دلیوں سے یا بہت زیادہ ایمرجنسی کیس ہوتا ہے ان کو کوئٹہ ریفر کیا جاتا ہے, پھر کوئٹہ کے رستے میں اموات ہو جاتی ہیں.
اور
یہاں سے رستے میں تقریباً 6-7 گھنٹے کا سفر ہے.
इसके लिए आपकी कम्युनिटी में कुछ खास काम नहीं हो रहा कि इन अमवात को कम किया जाए या बचाया जाए इन खवातीन को?
मिडवाइव्स अपने तरीके से तो काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे एनजीओ भी हैं, ITSP है, BRSP है, कुछ और भी हैं, इस्लामिक रिलीफ भी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी कमियां हैं अभी तक।
तो आपने
कुछ लेडीज डॉक्टर यहाँ पे हैं जिनके पोस्टिंग यहाँ पे, लेकिन बैठी हुई है क्वेटा है कराची बड़े बड़े शहरों में, यहाँ पे ड्यूटी भी नहीं करते हैं, उनकी वजह से भी काफी परेशानी है आवाम को।
तो आपने खुद देखा कुछ, आपको अंदाजा कि हर साल या हर माह या हर दिन कितनी खवातीन जो है वो इंतकाल कर जाती हैं इसी वजह से कि उनको सहूलत नहीं मिलती हेल्थ की?
तकरीबन हर साल 15 से 20 तक मौत हो जाती हैं डिलीवरी केसेस में।
कितने किस जगह पर, खारान में या आपके मुशाहिदे में आती हैं?
नहीं नहीं खारान में, ये मतलब तस्दीक शुदा है बिल्कुल, खारान में और दूर दराज इलाकों में भी। हम लोगों का बहुत बड़ा मसला भी यही है, 30 के दरमियान उनमें बच्चे भी शामिल है, उसमें डिलीवरी केसेस के जो पेशेंट है वो भी शामिल है, रस्ते में उनकी मौत हो जाती है या डिलीवरी के टाइम उनकी मौत हो जाती है, ब्लड न रुकने की वजह से भी उनकी मौत हो जाती है।
तो यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उसको राब्ता किया कभी आप लोगों ने?
बिल्कुल, हम लोगों ने भी राब्ता किया है, जितना भी यहाँ पे सिविल सोसाइटी है उन लोगों ने भी राब्ता किया है, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हो सका है लेडीज डॉक्टर का और इस मसले का।
तो फिर मिडवाइफ्स कितनी है आपके एरिया में जो कि अपना ये रोल अदा कर रही है, खासतौर पर COVID-19 में उन्होंने फिर क्या रोल प्ले किया?
इधर तकरीबन 10 के करीब है मिडवाइफ्स, कोरोना में भी उन लोगों ने बहुत अहम रोल अदा किया था, यहाँ पे किट्स वगैरह मास्क सैनिटाइजर वगैरह भी तकसीम किए थे।
तो इस दौरान कोई अमवात हुई जो COVID-19 के दौरान जब बच्चे पैदा हुए तो?
जी जी नहीं, इस तरह के कोई केसेस अभी तक सामने नहीं आए।
बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/urdubhoe और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubhoe पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में सोशल एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड नॉलेज या सीख के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर शेर अफजल गुजर, जिन्होंने KPK का जो रेस्क्यू 1122 है खैबर पख्तूनख्वा का इमरजेंसी सर्विस का, उनके साथ मिलकर एक ट्रेनिंग मुकम्मल करवाई है, एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं खवातीन की और ट्रांसजेंडर की और कुछ रजाकार मर्दों की भी, लड़कों की भी, और इस ट्रेनिंग में क्या क्या कुछ शामिल है ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम
वालेकुम। अस्सलाम
शेर अफजल गुजर साहब, बताइए कि आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने ये जो ट्रेनिंग अभी शुरू करवा दी है, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, कुछ हमारे सुनने वालों को ब्रीफ कीजिए कि इसका मकसद क्या था और इसमें क्या क्या ट्रेनिंग दी गई?
जी, ये खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी सर्विस जो है रेस्क्यू 112 के नाम से जिला मानसरा के अंदर जो है ये 2 माह पहले ये इदारा यहाँ पे अपनी सर्विस शुरू की है, और ये बुनियादी तौर पे ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये अदारा जो है कुछ ही अरसा पहले जो है इन्होंने काम अपना शुरू किया है, और ये ख्वातीन के हवाले से काम करना चाह रहे थे, क्योंकि मानसरा में और जो हमारे जो हजारा के अपर अजला है जैसे बटग्राम है, कोहिस्तान है, तौरगर है, तो इन अजला में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी ख्वातीन के हवाले से, कि इन्हें ख्वातीन रजाकार जो है ट्रेनिंग के हवाले से नहीं मिल रही थी, तो इस हवाले से हमने इनके साथ MOU किया है, और इसमें हम जो है हमने अपने जो सीख की जो हमारी वॉलंटियर्स थी, जो हमारा अदारा है सोशल एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड नॉलेज सीख, हमने कोरोना के दौरान जो जिन वॉलंटियर्स ने हमारे साथ मौजूद थे और जो ख्वातीन थी स्पेशली, उनको जो है हम ये ट्रेनिंग का हमने बंदोबस्त किया है, और ये ट्रेनिंग जो है ये इसका इनेकार जो है ये हमने किया, और ये जो रेस्क्यू 111 की जो टीम है वो उसमें बॉयज भी हैं और लड़कियां भी हैं, वो ख्वातीन को ट्रेनिंग दे रही थी, जिनमें इब्तदाई जो तिबी इमदाद है, फायर फाइटिंग है, इस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो है ना उन्होंने ख्वातीन को जो है ट्रेनिंग दी है, और इस हवाले से चूंकि ख्वातीन की बड़ी इस ट्रेनिंग की ख्वातीन के हवाले से बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये जो सर्विस है ये बुनियादी तौर पर अगर घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, किसी जगह में कोई पानी में डूब जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو یہ فوری رسپانس کرتے ہیں 7 منٹ کے اندر اندر. تو خواتین کے حوالے سے چونکہ گھر کے اندر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر خواتین موجود ہوتی ہیں, بچے اگر کوئی چیز نکل لیتے ہیں ان کے گلے میں پھنس جاتی ہے, یا یہ ڈلیوری کیسز کو بھی رسپانس کرتے ہیں اور گھر سے ہاسپٹل تک جو قریبی ہاسپٹل ہوتی ہے. تو خواتین کے حوالے سے جو کو چونکہ اس کی بڑی اہمیت تھی تو انہوں نے یہ ٹریننگ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کے یہ یہاں پہ انعقاد کیا ہم نے اپنے آفس میں, اور اس میں خواتین نے ہماری جو رضاکار خواتین ہیں انہوں نے جو ان کا پہلا بیج ہے وہ ٹریننگ مکمل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہم منڈے سے جو ہے بوائز کی وہ شروع کر رہے ہیں, اور اس کے اگلے بیج میں ہم ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ تقریباً ہمارے کچھ ٹرانسجینڈر ہیں ہمارے رضاکار ہیں سی کے, ان کو بھی ہم یہ جو ہے ٹریننگ دلائیں گے.
یہ بتائیے کہ یہ خواتین کن کن علاقوں سے تھیں اور کتنی ان کی تعداد تھی جن کو ٹریننگ آپ نے دی ہے؟
جی یہ ڈسٹرکٹ مانسہرا سے ہے, تعلق کے ڈسٹرکٹ مانسہرا کے مختلف جو دیہات ہیں گاؤں ہیں اور کچھ شہری علاقے ہیں وہاں سے ان کا تعلق ہے. مختلف جو یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سیکھ کے ساتھ کافی ٹائم سے جو ہے رضاکار ہیں. پہلا بیچ جو ہے جو ہم نے ان کو ٹریننگ مکمل کروائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم باقی جو بوائز ہیں وہ بھی تقریباً 20 کے قریب ہیں, اور اس طرح 15 کے قریب ٹرانسجینڈر ہیں جن کو ہم تربیت دے رہے ہیں. جی تیار کیا ہے اس حوالے سے جن خواتین کو ٹریننگ دی گئی ہے تو ان کو ساتھ یہ بھی چونکہ مشاورت کے بعد یہ وہ چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں خاص کر کے جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو پردے کی پابند ہیں باہر نکلنا نہیں چاہتی تو ان کو بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے اپنے گھروں میں ٹریننگ دے سکتی ہیں, خاص کر کے جو یہ جو فاسٹ ایڈ کے حوالے سے, فائر فائٹنگ کے حوالے سے, اور جو جس طرح چاکنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ کوئی چیز نکل لیتا ہے یا گھر کے اندر کوئی گر کے زخمی ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کو جو ہے زیادہ نقصان سے جو ہے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے, یا آگ پہ جو ہے پھر آگ کی جو قسمیں بتائی گئیں کہ اگر آگ جو ہے وہ کسی فیول اس کو لگتی ہے تو اس کو کیسے اس پہ قابو پانا ہے, اگر کسی بلڈنگ کو لگتی ہے تو اس کو کیسے بجھانا ہے, کسی شارٹ سرکٹ سے اگر آگ لگتی ہے تو اس پہ کیسے قابو پانا ہے, یہ مختلف ٹائپس کی جو ہے ان کو بتائی گئی ہیں تاکہ حادثات جو ہے وہ بچا جا سکے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان خواتین کے ذریعے ان کو چونکہ امپاور کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے سوسائٹی کے اندر باقی خواتین کو بھی جو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کو مزید جو ہے وہ ٹرین کریں.
بے حد شکریہ شیر اظہر گجر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ, اور اب امریکہ کی بات. امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اور رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکی عوام صدر ٹرمپ کی جانب سے اس وبا سے نمٹنے کے انداز پر خوش نہیں. کئی ماہ کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ صرف وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس پریس بریفنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ انہوں نے پہلی بار ماسک پہننے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سنیے نخبت ملک کی اس رپورٹ میں.
پیو ریسرچ کے ایک حالیہ سروے کے مطابق صرف 65% بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر یا سٹورز کے اندر ماسک پہنتے ہیں. کئی مہینوں تک چہرہ ڈھانپنے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس ہفتے کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسک پہنے ہوئے اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی اور کہا یہ وطن سے وفاداری ہے. منگل کے روز وہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی کرونا وائرس پریس بریفنگ میں شامل ہوئے اور ماسک پہننے کے معاملے پر اپنی حمایت کا اظہار کیا.
ماسک یہاں میرے پاس ہے, میں اسے رکھتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ماسک استعمال کر سکتے ہیں, اگر میں گروپ میں ہوں تو میں ماسک پہنوں گا.
اپریل میں امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے اپنی سابقہ ہدایات میں تبدیلی لاتے ہوئے طبی عملے کے ساتھ ساتھ تمام امریکیوں کے لیے ماسک پہننا ضروری قرار دیا تھا, لیکن امریکی صدر پچھلے مہینے تک عوامی مقامات پر اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا تھا کہ لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے ایک سروے کے مطابق 64% امریکی افراد صدر ٹرمپ کے کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے طریقہ کار کو رد کر رہے ہیں.
وبا بڑھنے کے ساتھ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, ان علاقوں میں بھی جہاں ریپبلکن گورنرز نے ان کی بات سنتے ہوئے کاروباروں کو کھولا, اور اب انہیں وبا کی وجہ سے سخت ترین مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے ان کا کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے.
امریکہ میں اب تک کورونا وائرس سے 140,000 سے زیادہ ہلاکتیں اور 38,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, اور سی ڈی سی کا نیا ڈیٹا بتاتا ہے کہ اصل تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. انتظامیہ اس بات پر مصر ہے کہ یہ نیا اضافہ ٹیسٹنگ بڑھانے سے ہوا ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں ملک میں کرونا وائرس پر کوئی قومی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا اتنا برا حال ہوا.
The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people.
وہ ممالک جنہوں نے اس معاملے پر قابو پایا ان کے ہاں واضح قومی اور طبی پالیسی موجود تھی. سیاسی رہنماؤں نے طبی عملے کی مدد کی اور آبادی کو واضح پیغامات پہنچاتے رہے. عوام کو پتا تھا کہ پروگرام کیا ہے اور وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں. یہی کامیابی کا فارمولا ہے، اور گورنرز پر سب کچھ چھوڑ دینا تباہی کو دعوت دینا ہے.
ایک طرف کرونا کیسز میں اضافے کے باوجود امریکی افراد گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ساحل سمندر جیسی جگہوں پر اب بھی جا رہے ہیں، اور سرکار کی جانب سے ایسے میں ماسکس پر بیانات، ٹیسٹنگ اور معیشت کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات رضاکارانہ ہیں. پیٹسی ویرا کسوارا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.